नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान ने संसद में एक नया बिल पारित कर महिला और पुरुषों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इस बिल को मौलवियों के एक ग्रुप गार्डियन काउंसिल द्वारा पारित किया जाना अभी बाकी है। बिल में महिला और पुरुष दोनों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बिल में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है, बल्कि 10 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। इस बिल के मुताबिक अब महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकेंगी। इसके अलावा अगर महिलाएं बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस बिल को संसद में करीब सभी सांसदों ने समर्थन दिया है। इस बिल के मुताबिक महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती या ऐसे कपड़े पर रोक लगेगी जिससे बॉडी पार्ट्स दिखता हो। प्यूबर्टी के बाद महिलाओं और लड़कियों को अपने बालों को हिजाब से ढकना होगा और अपने शरीर के हिस्से को छिपाने के लिए लंबे ढीले कपड़े पहनने होंगे। पुरुषों को ऐसा कपड़ा पहनने पर रोक होगा जिससे उनका सीना या फिर टखनों के ऊपर का हिस्सा दिखता हो। बता दें कि ईरान में हिजाब के विरोध में महिलाएं पिछले कुछ समय से विरोध कर रही हैं। पिछले दिनों महिलाओं ने अपने हेड स्काफ चलाए, अपने बाल काटे, वेस्टर्न ड्रेस में सड़कों पर देखी गई, ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। ईरान में इन महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में कथित रूप से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। महिलाओं ने हिजाब लगाना छोड़ दिया था, वो सार्वजनिक स्थानों पर बिना हेड स्काफ के नजर आने लगी थी। लेबनान की राजधानी बेरूत में बुधवार देर रात एक अज्ञात बंदूकधारी ने अमेरिकी दूतावास के बाहर गोलियां चलाईं। दूतावास के प्रवक्ता जेक नेल्सन ने एक बयान में बताया कि उपनगर अवकार में दूतावास के प्रवेश द्वार के आसपास छोटे हथियारों से गोलियां चलने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, कोई घायल नहीं हुआ और हमारा परिसर सुरक्षित है। हम मेज़बान देश के कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क में हैं। इस साल 18 अप्रैल को बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर घातक बम हमले की 40वीं बरसी थी। इस हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी अधिकारी इस हमले के लिए लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस हमले के बाद दूतावास को मध्य बेरूत से उपनगर अवकाश स्थानांतरित कर दिया गया। वहां पर भी 20 सितंबर 1984 को एक हमला हुआ था। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच विवाद पीएम जस्टिन ट्रूडो की कनाडाई संसद में की गई टिप्पणी के बाद बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। जब पीएम एंथनी अल्बानीज के इस बयान के बाद पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा था, क्या उन्हें इस पर अफसोस हो रहा है? इसके बाद पीएम एंथनी अल्बानीज ने इसका जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जिस स्टेडियम में पीएम मोदी थे उससे पहले मैं वहां मशहूर सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ मौजूद था। मैंने बिल्कुल सही बात कही थी। भारतीय प्रवासियों ने बेहद उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया था। बस इतनी सी बात है, इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का स्वागत किया, जैसा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आए बाकी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला से आए लाखों की तादाद में वेनेजुएला वासियों सहित अन्य लोगों के मेक्सिको के रास्ते अमेरिकी सीमा में प्रवेश की कोशिशों के बीच बाइडन प्रशासन ने कहा है कि वो देश में मौजूद हजारों वेनेजुएला वासियों को अस्थायी कानूनी दर्जा दे रहा है। गृह सुरक्षा मंत्रालय ने 31 जुलाई 2023 तक अमेरिका आए करीब 4,72,000 वेनेजुएला वासियों को अस्थायी संरक्षित दर्जा देने और देश में काम करने का अधिकार देने की योजना बनाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर और गवर्नर लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और अपने संरक्षण में आए ऐसे लोगों को शरण देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये संरक्षण उन 2,42,700 वेनेजुएला वासियों के अतिरिक्त होगा जो बुधवार की घोषणा से पहले ही अस्थायी दर्जा पाने की योग्यता रखते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो अमेयरकास ने इस विस्तार की मंजूरी दी और पहले से अस्थायी दर्जा प्राप्त लोगों के प्रवास के लिए 18 महीने का विस्तार दिया। वेनेजुएला वर्तमान में सुरक्षा, बिगड़ती मानवीय स्थिति, राजनीतिक और पर्यावरणीय संकटों से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। खान पर सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रचने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने को लेकर आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दंगों के दौरान रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं या उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 100 से अधिक वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।